राजवीर जी मंत्रमुग्ध से हुए बस सामने की दिशा की तरफ बढ़ रहे थे और उनके पीछे कुछ काले साए थे। राजवीर जी की आंखें पूरी खुली थीं और वो बिना पलके झपकाए आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मानो उन्हें पता हो कि उनकी मंजिल क्या है। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम्हें इस काम के लिए यही वृद्ध इंसान मिला था क्या? कम से कम ये तो देख लेते कि वो जवान है या नहीं। उन पांचों मूर्तियों को बाहर निकालने में इसे बहुत वक्त लगेगा। इसमें तो इतनी ताकत भी नहीं कि वो ये काम जल्दी से कर सके। पीछे से एक साया बड़बड़ाया, भले ही इसका शरीर वृद्ध है, लेकिन इसके अंदर जिस साये ने अभी प्रवेश किया है वो काफी शक्तिशाली है। उन गड्ढों को खोदने में इसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, दूसरे साये ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद वो लोग उस जगह पर मौजूद थे जहां राजपुरोहित जी ने उन मूर्तियों को गाड़ा था। जैसे ही वो उनके पास पहुंचे, राजवीर जी उन गड्ढों को खोदने लगे। एक के बाद एक उन्होंने पांचों गड्ढे खोद दिए, लेकिन उन गड्ढों को खोलने के बाद उन सबकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या, यहां तो कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन मालिक ने तो इसी जगह का बताया था, एक साई ने कहा। अगर हम उन मूर्तियों को लेकर वापस पाताल नहीं पहुंचे तो मालिक हमारी जान ले लेंगे। ऊपर से ये बुढ़ा, ये भी किसी काम नहीं आया। एक झटके के साथ राजवीर जी के अंदर मौजूद साया बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही राजवीर जी बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। लेकिन हमें कैसे भी करके मालिक को ये बताना ही होगा। अगर हमने उन्हें नहीं बताया तो उन्हें वैसे भी पता चल जाएगा और हमें और भी कड़ी सजा मिलेगी, उनमें से एक साया डरते हुए बोला। उसके कहते ही बाकी के साये चुप हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मूर्तियों को कहीं और गाढ़ा गया हो, उनमें से एक ने पूछा। अगर ऐसा होता तो कल इस गड्ढे को खोदते वक्त हमें झटका नहीं लगता। ये वही जगह है और इसे किसी पवित्र चीज से बांधा गया था। जब इसके अंदर मूर्तियां हैं ही नहीं तो फिर उन्हें खोदने का क्या मतलब हुआ, दूसरे साई ने गुस्से में जवाब दिया। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी उनके ऊपर एक काला बादल गुजरा और उसमें से जोर से बिजली कड़कड़ाई। मालिक का बुलावा आ गया है, हमें यहां से जाना होगा और उन्हें सब बताना होगा। इसी के साथ सारे साए वहां से अदृश्य हो गए। अगले ही पल वो सभी पाताल में थे। नरक का देवता अपने सिंहासन पर गुस्से में बैठा था और वो सारे साए उसके आगे सर झुकाए हुए थे। हम सच कह रहे हैं मालिक, हमने उस जमीन को नीचे तक खोद दिया, लेकिन फिर भी वहां पर वो पांचों मूर्तियां नहीं मिली। जैसे ही उस साए ने अपनी बात खत्म की, नरक के देवता ने अपना दंड उठाया और उन सायों पर एक वार किया। उस दंड में लगे नीले पत्थर से एक रोशनी निकली और उन सायों से जा टकराई। उसके बाद वो सभी साए बुरी तरह तड़पने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें एक और मौका दे दो, हम इस बार आपको निराश नहीं करेंगे। सारे साए एक सुर में कराहने लगे। उनके चीखने चिल्लाने का नरक के देवता पर कोई असर नहीं हुआ। नरक में दया और माफी जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं थी। हाँ, अगर कुछ मायने रखता था तो वो था सजा। वो अभी भी गुस्से में अपने सिंहासन पर बैठा उन्हें देख रहा था। अज्ञा चंद्र ग्रहण आने में बस कुछ वक्त शेष रहा है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें खुद नीचे जाकर रिवांश को अपने वश में करके पाताल लाना पड़ेगा और उसे यहाँ का राजा घोषित करना होगा। लेकिन यहाँ का राजा बनने से पहले किसी भी शैतानी आत्मा को पहले अपना खुद का शासन स्थापित करना होता है। इसीलिए हम रिवांश में बुराई का अंश डालकर उसके द्वारा धरती पर पिशाच राज स्थापित करना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाताल की बाकी आत्माएं विद्रोह न कर दें। लगता है इस बार हमें स्वयं को जाना होगा, शैतान ने कहा और उन तड़पती हुई आत्माओं को वैसे ही छोड़कर वहां से अदृश्य हो गया। उसके जाने के बाद भी वो आत्माएं वैसे ही चिल्लाकर माफी की भीख मांग रही थीं। उन सबकी आवाजें पूरे पाताल में गूंज रही थीं। राजवीर जी ने पुलिस को मदद के लिए बुलाया था, वो जंगल के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी की भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जंगल के बाहर इंस्पेक्टर दुबे अपनी टीम के साथ खड़े थे। अरे, इस जंगल के अंदर कौन जाएगा? एक बात समझ नहीं आती कि सबको इस जंगल के अंदर जाकर ही एडवेंचर क्यों करना होता है, क्या तो जवान और क्या ही बुजुर्ग, इंस्पेक्टर दुबे गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। लेकिन सर, अब अंदर तो जाना ही होगा, पिछले कई दिनों से यहाँ किसी वारदात की खबर नहीं आ रही। हो सकता है कि वो आदमखोर जानवर यहाँ से चला गया होगा जो लोगों का खून पीता था, पास खड़े कांस्टेबल मिश्रा ने कहा। मिश्रा जी, आप समझते नहीं हो, ऐसे आदमखोर जानवर कहीं नहीं जाते, बस कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश करते हैं। चलो ठीक है, अब अंदर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सभी एक झुंड में रहना। वर्मा जी को बोलो कि पीछे से गाड़ी लेकर आए, क्या पता भागना पड़े तो कम से कम साथ में गाड़ी तो हो। दुबे सबको इंस्ट्रक्शन देकर अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर जाते हुए उन सबको डर लग रहा था, लेकिन जैसे तैसे सब एक साथ अंदर गए। जंगल के काफी अंदर जाकर उन्हें एक जगह पर पांच गड्ढे किए हुए मिले और उनके पास राजवीर जी बेहोश पड़े थे। उन्हें देखते ही इंस्पेक्टर दुबे उन्हें पहचान गए और कहा, अरे, ये तो वही अंकल हैं जो उस दिन जानवी के साथ आए थे। पहले इनकी पोती गायब हो गई थी और अब दादा। ऐसा करो, मिश्रा, इन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा। सर, अभी तक सांसें चल रही हैं, मिश्रा ने राजवीर जी की नब्ज महसूस करते हुए कहा। फिर भी इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, एक टीम को यहां छोड़ दो फिर चलते हैं, इंस्पेक्टर दुबे ने कहा। दुबे के कहने पर मिश्रा ने एक और कांस्टेबल के साथ मिलकर राजवीर जी को उठाया और गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा अभी तक अलीजा के घर में थी और सो रही थी। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आया और उसे राजवीर जी के हॉस्पिटल में होने के बाद पता चली। मैंने अपने सपने में दादू को हॉस्पिटल में देखा था और उसके बाद रिवांश। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिवांश मैंने दादू को नहीं मार सकता। आकांक्षा को राजवीर जी के साथ अपने देखे उस सपने की भी फिक्र सताने लगी जिसमें उसने रिवांश को उनका खून पीते हुए देखा था। क्रमशः कीप सपोर्टिंग।